الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا، آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ ہم یہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ان عملوں پر، اگر یہ اللہ کی بارگاہ ہمیں قبولیت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے جن جنتوں کا وعدہ کیا ہے وہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ روز محشر نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا، کسی کو حساب دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، کسی کو بائیں میں دیا جا رہا ہے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ نفس نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، وہاں ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، اور ہر ایک کو صرف اور صرف یہ جستجو ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مجھے بخشش کا مژدہ عطا کر دیا جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس روز جن کا حساب سختی سے لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے۔ تو آج اس دنیا میں ہی ہمیں اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا، نیک عمل کرنے ہیں تاکہ آخرت بہتر ہو سکے، ہماری قبر بہتر ہو سکے۔ اسی حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب الجامع الصحیح للبخاری سے آج ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب ایمان والوں کی پیاری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یہ عمل تھا جسے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، کانت لا تسمع شیئا لا تعرفه الا راجعت فیہ حتی تعرفه۔ آپ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یہ عمل مبارک تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں اور آپ اس کو سمجھ نہ پائیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رجوع کرتی تھی، راجعت فیہ، یہاں تک کہ اس بات کو سمجھ لیتی، یعنی پوچھ لیا کرتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرا دیتے یا اس کی وضاحت کر دیا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذب، قالت عائشہ فقلت اولیس یقول اللہ تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، قالت فقال انما ذالک الارض ولیکن من نوقش الحساب یہلک۔ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یہ سن کر میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر ارشاد فرمایا، فرمایا انما ذالک العرض، یہ تو صرف عرض ہے، یعنی اس میں تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیشی کا ذکر ہے، یعنی پیش کیا جانا وہ آسان ہوگا، لیکن جس شخص کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی، من نوقش الحساب، اس کا مناقشہ کیا گیا، جس کے حساب و کتاب میں جانچ پڑتال کی گئی، تو فرمایا وہ پھر غارت ہو گیا۔ اس حدیث مبارک میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ اس حدیث پاک سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا ثبوت ہے اور مسائل کی تحقیق میں ان کے حرص کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا یا اس میں کوئی ابہام ہوتا تو آپ اس میں ڈیپلی پوچھا کرتی تھی اور اس کی وضاحت لے لیا کرتی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ علمی مسائل میں بات اگر سمجھ نہ آئے یا پھر اس کے خلاف کوئی اور بات دل میں موجود ہو تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں پوچھ لینی چاہیے، اور جس سے پوچھا جائے تو اسے پوچھنے والے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک میں جب حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا حساب کیا گیا من حوسب عذب، تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو بیان کر کے گویا کہ معارضہ کیا، اور نبی علیہ السلام اس سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا جو محمل ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرما دیا کہ اس آیت میں جو مراد ہے وہ آسان حساب لینے سے مراد یہ ہے کہ ان کو حساب پیش جو کیا جائے گا وہ آسان انداز میں ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی شاگرد استاد سے کسی علمی بات پر اعتراض کرتا ہے اور وضاحت چاہتا ہے तो उस्ताद को मुअल्लिम को नाराज नहीं होना चाहिए बल्कि तहम्बुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए बात को सुनकर उस बात को समझा देना चाहिए ताकि वो एतराज दूर हो जाए और बात इसे समझ आ जाए। और शागिर्द को चाहिए, पूछने वाले को चाहिए, ऑडियंस को चाहिए कि जब वो सवाल पूछे तो अदब का दायरा कार बिल्कुल सामने रखें, मलहूज रखें, क्योंकि बा अदब बा नसीब है। सिर्फ झगड़ा करने के लिए ऐसा ना करें। यह जो मुआरजा करना है या एतराज कायम करना है, बात समझ नहीं आई या कोई और बात बिल्कुल इसके अगेंस्ट दिल में मौजूद है, तो सिर्फ उसकी वजाहत के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपने इल्म के लिए पूछना चाहिए, ना कि सिर्फ धाक बंधाने के लिए कि मुझे आपसे ज्यादा इल्म है। हो सकता है कि आपको ज्यादा इल्म हो, लेकिन इससे फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। लोग बजन होंगे, अहले इल्म हजरात से दूर होंगे, तो ऐसा करने की बजाय अदब के दायरे में रखकर बात को पूछ लेना चाहिए ताकि कहीं मैं गलत रविश पर न चल पड़ूं और मेरे दिल में जो बात बैठी है कहीं उसका मुझे नुकसान ना हो, मैं इसकी वजाहत ले लूं ताकि मेरी दुनिया भी और आखिरत भी बेहतर हो सके। हदीस में फरमाया मन हुसिबा उज़िबा, जिससे हिसाब लिया गया तो उसको अजाब दिया गया। तो मदनी चैनल के नाजरीन, चूंकि मोहतमद शुरुआत की रोशनी में आप इस सिलसिले में यह भी जान पाते हैं कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने इस फरमान से क्या मुराद पेशे नजर रही, तो हदीस के इस जुमले के हवाले से शारी ने हदीस ने लिखा कि इसके दो महमल हैं। इसका एक माना तो यह है कि जिस दिन इंसान के सामने उसके गुनाहों को पेश किया जाएगा और उसको उसके किए हुए बुरे कामों पर मुत्तले किया जाएगा, ये उसके लिए सख्त अजाब और मुजम्मत का बाइस होगा। आदमी छुपकर गुनाह किया है, किसी को पता नहीं था और बड़ी खामोशी के साथ जा रहे थे, फिर ऐसा हुआ दिन गुजरते रहे, अचानक वो गुनाह सामने आ गया, किसी भी वजह से अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आ गई। अब वो जब सामने आया तो नमोशी का दिन है, इंतहाई शर्मिंदगी का दिन, इंतहाई सख्ती का दिन बन जाता है। तो कहा इसी तरह जिस दिन इंसान के सामने उसके गुनाह पेश किए जाएंगे और उसको इसके किए हुए बुरे कामों पर मुत्तले किया जाएगा, तो ये उसके लिए सख्त अजाब और मुजम्मत का बाइस होगा। और दूसरा इसका माना यह है कि उसका जो हिसाब लेना है उसके अजाब के इस्तेहकार की तरफ उसे पहुंचा देता है। हिसाब लेना ही अजाब के इस्तेहकार की तरफ पहुंचा देता है, क्योंकि जब बंदा कोई नेकी करता है वो अल्लाह तबारक वताला के फजल और उसकी तौफीक से करता है, और नेकी पर उसके हिदायत देने और कुदरत देने से करता है, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता और एक जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। और बंदे के ऐसे आमाल बहुत कम होते हैं जो इसने इखलास के साथ अल्लाह तबारक व ताला की रिजा के लिए किए होते हैं। तो फिर क्या है कि जब हिसाब होगा, जांच पड़ताल होगी, मुनाक्षे किए जाएंगे, सख्ती की जाएगी, तो फिर यह सख्ती होना और हिसाब में मुनाक्षा होना ये अजाब के इस्तेहकाक की तरफ बंदे को ले जाएगा। तो फरमाया गया फसौ फयुहासबु हिसाबै यसीरा, मुराद इससे यह है कि अन करीब इससे आसान हिसाब लिया जाएगा, यानी इस पर जो हिसाब पेश किया जाएगा वो आसान है, यानी बहुत सरल होगा और इसमें कोई जरा नहीं की जाएगी और इसमें इस पर कोई एतराज नहीं होगा जो इसके ऊपर दुश्वार गुजरे। इस आयत मुबारका इससे पहले और इसके बाद वाली आयत मुबारका भी समाज फरमाइए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिह फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, जिसे उसका नामे आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिह फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो अन करीब उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। और फरमाया वयन कालिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो अपने घर वालों की तरफ खुशी खुशी पलटेगा। इस आय मुबारका के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा कि कयामत के दिन जिसे उसका नाम आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो अनकरीब उससे आसान हिसाब लिया जाएगा, और वो हिसाब के बाद अपने जन्नती घर वालों की तरफ अपनी इस कामयाबी पर खुशी खुशी पलटेगा। और दुनिया में भी ऐसा होता है, इंसान को कभी खुशी मिल जाती है तो अहले खाना को सुनाने में बेताब होता है, फौरन पहुंचता है या मोबाइल का सहारा लेता है किसी ना किसी जरिए से अहले खाना को खुशखबरी पहुंचाता है। यानी उसका टारगेट ये होता है जो इसके प्यारे हैं ये उनकी तरफ पलटे या उनको खबर दे कि मुझे अल्लाह ने ये खुशी अता फरमाई है। ये दुनिया में हाल है, और कल रोजे महशर वयनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, खुशी खुशी अपने अहले खाना की तरफ पलटेगा और उन्हें बताएगा कि मुझे अल्लाह ने कामयाबी अता फरमा दी है, मेरा नाम आमाल मेरे दाएं हाथ में मुझे दिया गया है और मेरे लिए आसानी की गई है, और इस खुशी पर अपनी इस कामयाबी पर अपने अहले खाना की तरफ पलटेगा। मुफस्सिरीन ने लिखा याद रहे कि कयामत के दिन बास अहले ईमान ऐसे होंगे जिन्हें उनका जो नाम आमाल है वो दिया ही नहीं जाएगा और वो बगैर हिसाब किताब के सीधे जन्नत में चले जाएंगे। नाम आमाल मिला नहीं, अल्लाह की रहमत से सीधे जन्नत में। और बाद अहले ईमान ऐसे भी होंगे कि जब वो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर होंगे तो उनसे तहकीक और जरा वाला हिसाब नहीं होगा, तहकीक नहीं की जाएगी, जरा नहीं की जाएगी, उनका मुनाक्षा नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ उनके आमाल उनके ऊपर पेश किए जाएंगे। वो अपनी नेकियों और गुनाहों को पहचानेंगे, फिर उन्हें नेकियों पर सवाब दिया जाएगा जो उनके गुनाह हैं, उनसे दरगुजर कर लिया जाएगा। ये वो आसान हिसाब है जिसका इस आय मुबारका के अंदर जिक्र किया गया कि ना शदीद एतराजात करके आमाल की तनकी हुई, ना ये कहा जाएगा कि ऐसा क्यों किया, ना उजर तलब किया जाएगा और ना ही इस पर हुज्जत को कायम किया जाएगा, क्योंकि जिससे मुतालबा किया गया तो उसे कोई उजर हाथ आएगा ही नहीं और ना वो कोई हुज्जत पाएगा, इस तरह क्या होगा कि वो रुस्वा हो जाएगा। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि बास अहले ईमान ऐसे होंगे कि जब वो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश होंगे तो उनके हर अमल की पूछगछ होगी, इनका कोई गुनाह नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल अमान वल हफीज। और उन्हें उनके बुरे आमाल की सजा काटने के लिए एक मखसूस मुद्दत तक जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और यह भी ईमान वालों के लिए है, कुफार तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और जो ईमान वाले गुनाहगार हैं जिनके लिए यह फैसला हुआ कि इन्होंने जहन्नम में जाना है, सजा काटनी है, जहन्नम में चले जाएंगे और फिर जो मुद्दत इनके लिए मुकर्रर होगी, मुकर्रा मुद्दत तक, मखसूस मुद्दत तक ये जहन्नम की आग में सजा भुगतेंगे, फिर उसके बाद बाहर निकल आएंगे। तो उलमा ने लिखा कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कयामत के दिन आसान हिसाब लिए जाने की दुआ करता रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आपने फरमाया कि मैंने एक मर्तबा नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दुआ मांगते हुए सुना, खुद आपने सुना। हजूर दुआ क्या मांग रहे थे? अल्लाह की बारगाह में अर्ज ये कर रहे थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ए अल्लाह मुझसे आसान हिसाब ले। आप जब नमाज से फारिग हो गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस हुए तो सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती, मैंने फिर हजूर की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसान हिसाब से आपकी मुराद क्या है? इरशाद फरमाया, इससे मुराद ये है कि बस बंदे के आमाल नामे को देखा जाए और उसके गुनाहों को नजरअंदाज कर दिया जाए। और फरमाया कि ए आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कयामत के दिन जिससे आमाल के हिसाब के मामले के अंदर जरा की गई, तहकीक की गई, तो फरमाया वो हलाक हुआ यानी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि अब मामला हिसाब का आ गया। सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ले अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? उनकी उम्मत में बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी उम्मत में बनाया, उन्हें रहमत भेजा, यूं ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है? और फरमाया, सदका प्यारे की हया का के ना ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है? तो इसमें यह बात वाजे कर दी गई कि जिस हिसाब पर अजाब है, इससे मुराद वो हिसाब है जिसमें जरा होगी, जिसमें तहकीक होगी। जैसा कि आज के इस सिलसिले में सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक से यह बात बिल्कुल वाजे हो गई कि मन नूकिशल हिसाब यहलिक, लेकिन जिससे हिसाब में जराह कर ली गई, तहकीक कर ली गई, पूछगछ कर ली गई, जांच पड़ताल कर ली गई, वो हलाक हो जाएगा। इसलिए मदीन शहर के नाजरीन, हम सबको ये दुआ जहन में रखनी है, दुआ मांगते रहे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। एक तो सुन्नत से साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, अगर हम मांगेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज, अल्लाह करीम है, रहीम है, वो हम सब पर रहमत फरमाएगा, मेहरबानी फरमाएगा। एक हदीस मुबारक में है कि पिछली उम्मतों में एक बुजुर्ग थे, बीच समुंदर में एक पहाड़ के ऊपर वो तन्हा रहते थे, अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए अनार का एक दरख्त उगा दिया और एक मीठे पानी का जो चश्मा है वहां उनके करीब ही फूट पड़ा। ये अनार खाते, पानी पीते और दिन रात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करते थे। इसी हालत में इनके ऊपर 500 साल गुजर गए, 500 साल। आखिर हुआ ये कि इनका आखिरी वक्त आ गया, क्योंकि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, और जब वक्त आखिर आ जाता है फिर ये हर गिज मुअख्खर नहीं होता। उनका वक्त आखिर आ गया, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने अर्ज किया कि इतनी मोहलत दीजिए कि मैं वजू करके 2 रकत नमाज अदा करूं, जब आखिरी रकत का सजदा करूं तो फिर मेरी रूह को कब्ज कर लीजिएगा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसकी इजाजत लाया हूं, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने पहले ही इसकी इजाजत अता फरमाई थी, लिहाजा आप 2 रकत नमाज वुजू करने के बाद पढ़ लीजिए, आखिरी सजदे में आपकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। चुनाचे फिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, 2 रकत नमाज के दूसरे सजदे में थे कि उनकी रूह को कब्ज कर लिया गया। हदीस में फरमाया, ये अब तक सजदे में है और इनका बदन भी सलामत, रूह कब्ज हो चुकी है, पहाड़ के ऊपर है, सजदे में है, जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आई, अल्लाह की कुदरत है, जिसको चाहे रब्बे कायनात उसके वजूद को महफूज फरमाता है और सलामत रखता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बारगाहे रिसालत में अर्ज की, हजूर हम जब आसमान से उतरते हैं या आसमान की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि यह बुजुर्ग इसी तरह सजदे की हालत में है। हदीस पाक में इरशाद हुआ कि उस बंदे खुदा को रोजे कयामत जब बारगाहे इलाही में पेश किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को यह हुक्म देगा, इज़हबू बिअब्दी इला जन्नती बिरहमती, मेरे इस बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। उस वक्त इनके मुंह से एक जुमला निकलेगा, इलाही मेरे अमल से, यानी मैंने अमल ही ऐसे किए हैं कि अपने आमाल ही की वजह से मैं तो जन्नत का मुस्तहिक हूं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, हुक्म इलाही होगा, इसे वापस लाओ, मेजान पर खड़ा करो। अब उसके 500 साल की इबादत एक पलड़े में रखी जाएगी, जो अमल किए 500 साल की इबादत एक पलड़े में रखी जाएगी। अब मिजान अमल पर आ चुके हैं और दुनिया में 500 साल तक उन्हें जो नेमतें अता हुई उनमें से सिर्फ एक नेमत आंख जो रब ने अता फरमाई, दूसरे पलड़े में उसे रख दिया जाएगा। मदनी के नाजरीन, सिर्फ आंख का वजन 500 साल की इबादत से बढ़ जाएगा। सारी उम्र सजदों में रहें, सिर्फ आंख का बदला नहीं दे सकते, यानी शुक्र अदा नहीं कर सकते। हमारी जिंदगियां खत्म हो जाए, अल्लाह ने इतनी नेमतें, दिन रात नेमतें मिल रही, रात को सोते हैं सुबह फिर आंख खुल जाती, एक सांस के बाद दूसरी सांस, शऊर मिला है, पहलू में धड़कता हुआ दिल है, कानों की समातें हैं, नजरों में हमारी बसारतें हैं, और जुबानें हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, काम काज कर सकते, इतनी नेमतें, सिर्फ एक आंख एक पलड़े में 500 साल की इबादत दूसरे पलड़े में रखी जाएंगी। तो अल्लाह की एक नेमत का जो वजन है बढ़ जाएगा, 500 साल की इबादत की जो नेकियां है, वो आमाल जो है उनका वजन कम हो जाएगा। अब हुक्म होगा, मेरे इस बंदे को मेरे अदल से, जी हां मदनी चैनल के राज, अदल से जहन्नुम में ले जाए। अब वो घबरा कर अर्ज करेंगे, ए रब बल्कि तेरी रहमत से। फिर हुक्म होगा, इज हबूब आबदी इला जन्नती बिरहमती, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। अल्लाह करीम अपनी रहमतें हम सबको अता फरमाए। हमारे अमल कबूलियत के दर्जे पर फायज भी है या नहीं हम नहीं जानते, ना लादरी, लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। मालिक करीम ने कबूल फरमाए, हम सब के लिए जरिया नजात बनाए और हम सब को बेहिसाब जन्नत में दाखिला भी अता फरमाए। अल्लाह करीम अमल की दौलत से नवाजे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहाबिहि वबारिक वसल्लम।
ईमान है।